एक स्टडी ये भी कहती है कि वो बच्चे जो या तो बुलिंग करते हैं या बुली होते हैं, इन सब बच्चों की तादाद अगर शामिल कर ली जाए तो किसी भी इदारे में ऐसे बच्चों की तादाद तकरीबन 80% के करीब पहुंच जाती है। तो ये बड़े खतरनाक आदाद व शुमार हैं। और ये मसला इस सारी सिचुएशन में, मतलब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि इतने मासूम, इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे एक दूसरे के साथ आपस में एडजस्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ इनकी बन नहीं पा रही, और चलें बन नहीं पा रही और खेल नहीं रहे और अदम तआवुन है, ये तो चलें अलग मसला है, ये तो छोटी बात है ना मतलब। लेकिन ये एक दूसरे के लिए जहनी परेशानी का बाइस बन गए हैं, एक दूसरे के लिए जहनी कोफ्त का बाइस बन गए हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। और जब इस मसले का शिकार कोई बच्चा होता है, किसी को बुली किया जाता है, तो इसके नताइज कितने खतरनाक हो सकते हैं, वो ये है कि भाई उसकी नफसियाती सेहत मुतासर हो रही है, वो बहुत से बच्चे इस वजह से शदीद ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नफसियाती तौर पर बहुत डिस्टर्ब हैं, बास बच्चे इसकी वजह से डिप्रेशन में भी जाते हैं और अपनी सेहत उनकी खराब होती है, उनकी तालीमी कारकर्दगी खराब होती है। तो ये सब मसाइल भी इसके नतीजे के तौर पर पैदा हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मसला कैसे पैदा हो रहा है, इस मसले के इलाज में क्या करना चाहिए, हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। ईआरडीसी जिस होलिस्टिक आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करता है, ईआरडीसी की तालीम व तरबिया के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत होलिस्टिक आइडियोलॉजी है जो फैमिली लाइफ और इंस्टीट्यूशनल लाइफ और कम्युनिटी लाइफ में तालीम व तरबिया के जितने इम्कान हैं हम उसके ऊपर गौर भी करते हैं, उनको बरोएकार लाने की, उनका एक उनसे इस्तफादे की सूरतें भी सोचते हैं, और बहुत से मसाइल का हम अपने ईमानी तनाजुर में तजिए की भी कोशिश करते हैं। तो क्या इस मसले के ऊपर हमारा रिस्पॉन्स क्या है, मतलब अगर किसी बच्चे को बुली किया जा रहा है? अच्छा, इसमें मैं एक दो मिसालें और जिक्र करूं। देखें, बुली किस किस बुनियाद पर किया जा रहा है, मतलब बाज औकात अगर किसी जगह पर एक बच्चा थोड़ा सा मजहब से करीब है, तो अगर उसकी क्लास में बाकी बच्चे मजहब से उतना लगाव नहीं रखते और इसको किसी मजहबी जिम्मेदारी या फर्ज की अदायगी में मशगूल देखते हैं, तो इसके ऊपर मुमकिन है कि कोई कोई तंजिया जुमला या कोई ऐसा फकरा, कोई ऐसा कमेंट पास कर दिया जाए, तो ये भी बुलिंग की एक मिसाल है। इसी तरह अगर कोई बच्चा जो है, या कोई लड़का या कोई लड़की जो है, उसका कद छोटा है या ज्यादा लंबा है, या वो दुबली है या दुबला है या मोटी है, ओबेसिटी उसको है, तो अगर वो ओवरवेट है तो उसकी जो फिजिकल अपियरेंस है, लंबा छोटा मोटा पतला, इस तरह की जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी कोई उसका नाम रख दिया जाता है, उसको मोटू कह रहे हैं, उसको छोटू कह रहे हैं, उसको कोई और अजीब सा नाम रख रहे हैं उसका, या उसके ऊपर तंज कर रहे हैं, ये भी बुलिंग की एक केस है। इसी तरह किसी बच्चे का या कोई और ऐसा मसला है, या उसको कोई और दुश्वारी है, या उसका नाम अगर बहुत मुख्तलिफ है तो उसके नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, या अगर किसी बच्चे की उसकी उसकी शख्सियत का एक पहलू है, वो एक खास चीज खाना चाहता है, या वो एक खास अंदाज से वो काम करता है, या वो एक खास अंदाज से खेलता है, तो अब अगर बाकी बच्चों ने वो जो अनयूजुअल सी चीज उसके अंदर देखी है जो वो नहीं कर रहे, तो मुमकिन है कि इस बात का एक मजाक उड़ाया जाए और ये एक टारगेट करके इसके ऊपर एक टॉन्टिंग या सार्केज्म ये वाला मामला पेश आए। ये सब केसेस जो हैं वो बुलिंग के केसेस हैं। अभी पिछले दिनों किसी फैमिली ने अपना एक प्रॉब्लम शेयर किया और मुझे उससे अंदाजा हुआ कि बुलिंग के केसेस कितने बढ़ गए हैं हमारे माशरों में, कि एक फैमिली में एक बच्चे का अपने वालदेन से एक अच्छा ताल्लुक है, वो एक कम्युनिटी में रहता है और उस अपने वालदेन से और अपनी माँ से और अपने बाप से अपनी हर बात जाके शेयर करता है, या उनके साथ उसके वालदेन उसके साथ खेलते हैं, तो बाकी बच्चे जो जिनके वालदेन उनके साथ नहीं खेलते और वो अपने वालदेन से उतना क्लोजली कनेक्टेड नहीं है, उन्होंने इस बच्चे को जो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा क्लोज है उसको उन्होंने उसका एक नाम रख दिया कि तुम तो मम्मी डैडी। तो ये जो मम्मी डैडी वाला लकब इसे मिला है या खिताब इसे मिला है ना कि यू आर अ मम्मी डैडी बॉय, तो अब ये उसके ऊपर ये बहुत इरिटेट होता है कि मुझे, मतलब अगर मैं अपनी माँ के साथ और अपने वालिद के साथ खेल रहा हूँ, और ये बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसको अब ये इस बात पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे वाकयात और बहुत सारी मामलात मुसलसल पैदा हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि बच्चों में किसी दूसरे बच्चे को तकलीफ देना क्या ये मतलब ये रुझान उनमें कैसे पैदा हुआ, और क्या इसके बारे में हमें ये गुमान करना चाहिए कि ये इनकी नियत और इनके इरादे और इनकी फितरत का हिस्सा है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जिसको हमें समझने की जरूरत है, कि बच्चों के अंदर ये जो रुझान पैदा हुआ है ये फितरी नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि इसकी बुनियाद पर हम ये समझें कि वो बच्चा जो किसी के साथ ज्यादती कर रहा है वो बाय नेचर या फितरतन बुरा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसी तरह ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये बच्चा जानबूझकर और इंटेंशनली कर रहा है। अच्छा, अगर आपको ये नजर आ भी जाए कि हाँ ये इंटेंशनली कर रहा है और रिपीटेड बिहेवियर्स और रिपीटेड एक्सपीरियंसेस आपको ये बता रहे हैं, तो भी आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसकी इंटेंशन के बारे में कोई राय ना बनाएं। आप अच्छी राय भी नहीं बना रहे तो आप बुरी राय भी अपने जहन में बनने ना दें, ये एक अखलाकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस ठीक है, वो ये कर रहा है, उससे ये हो रहा है, ये एक अलग मसला है। मैं आपको ये बात अर्ज करूं कि जो बच्चा बुली कर रहा है और जो बच्चा बुली हो रहा है, ये दोनों प्रॉब्लम में है। इनमें से मतलब ठीक है, वो एक बच्चा उसकी कॉज बन रहा है, दूसरा बच्चा उसका उसका शिकार हो रहा है। अब हमारा गोल क्या होना चाहिए इस पूरी सिचुएशन के अंदर, हमें करना क्या चाहिए? हमारे तीन बड़े गोल्स होने चाहिए इस पूरे सिनेरियो में। जैसे मैंने कहा कि बुलिंग का सबसे ज्यादा जो शिकार जो सिचुएशन है वो स्कूल की जो सिचुएशन है उसमें ये अमल सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये घरों में और महल्लों में और कम्युनिटी में और हत्ता के बड़ी उम्र के लोगों के साथ भी ये वाकयात पेश आते हैं। लेकिन अभी हम बड़ी उम्र के लोगों के साथ जो वाकयात बुलिंग के पेश आ रहे हैं, ये हमारा इस वक्त स्कोप ऑफ डिस्कशन नहीं, हम अभी सिर्फ बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं। प्ले ग्राउंड्स में भी ये वाकयात पेश आते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स में भी ये वाकयात पेश आते हैं, बाज़ोकात स्कूल ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ये वाकयात पेश आते हैं, और सिबलिंग्स के साथ भी ये वाकयात पेश आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसकी जो अकरेंस है वो स्कूल्स के अंदर है या तालीमी इदारों के अंदर है। अब हम जरा देखते हैं कि ये मसला क्या है और इसमें हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। मैंने ये कहा कि हमारे तीन बड़े गोल्स इस पूरे सिनेरियो में, अगर हमें कोई काम करना है तो हमारे तीन बड़े गोल्स होने चाहिए या तीन बड़े ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, यानी जो बच्चा बुली हुआ है, बुलीइंग के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उस से इस बच्चे को बाहर निकाला जाए। यानी जो बुलीइंग के नतीजे में जो डैमेज हुआ है, वो डैमेज पहले तो उस डैमेज को लिमिट किया जाए और उस डैमेज के जो उसका तदारुक किया जाए, उसके यानी एक तरह से उसको उसको जो नुकसान पहुंचा है बुलीइंग के नतीजे में, उस नुकसान की तलाफी की जाए, उस नुकसान का अजाला किया जाए, उसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट या इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा है उसको कैसे हम ज्यादती के जो मनफी असरात हैं उनके असर से उसको कैसे निकाला जाए या उससे कैसे बचाया जाए। दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस तरह की कोई भी सूरत हाल जो बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है, आप बिल्कुल अंदाजा नहीं कर सकते कि ये वाकया कब किसके साथ कहाँ पेश आ सकता है, तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल बनाया जाए, इस तरह की सिचुएशन को डील करने के काबिल बनाया जाए, ये दूसरा गोल है। पहला गोल ये है कि माजी में मेरे साथ जो बुलीइंग हुई है उसके मनफी असर से मैं अपने आप को बचाऊं और निकालूं। दूसरा गोल ये है, यानी बच्चे को बचाऊं और निकालूं। दूसरा गोल ये है कि मेरा बच्चा मुस्तकबिल में अगर कभी कोई बुलीइंग का कोई ऐसा केस होता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, वो अपने यानी इसका शिकार ना हो और इस सिचुएशन को एक अच्छे अंदाज से हैंडल कर सके, उसे आता हो कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो बच्चा जो बुली कर रहा है उस बच्चे को ज्यादती करने से रोका जाए, वो क्यों ज्यादती कर रहा है उसकी भी इसलाह हो। और ये जो इसलाह होती है ये इसलाह कानून बना लेने से नहीं होती, और ये इसलाह अवेयरनेस पैदा करने से भी नहीं होती। मास स्केल अवेयरनेस बुलिंग की अगर शऊर की कमी के साथ होती रहेगी तो मुझे ये खतरा है, यानी मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे बहुत मनफी अंदाज में लेबल हो जाएंगे, उनकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत खराब हो जाएगी। मतलब सोसाइटी में अगर 10-15%, 20% बच्चों की जो रीजन ऑफ रेप्यूटेशन है वो अगर खराब हो गई और उनके बारे में ये पूरी सोसाइटी ने बिलीव कर लिया कि ये तो बुलीज हैं, तो ये ये जो बुलीज हैं, ये तो बहरहाल मतलब बस इन इनका अब जिंदगी में होगा क्या? मतलब सिर्फ इनको मार्क कर देना काफी है क्या, और इस अमल को डिफाइन कर देना काफी है क्या? ये काफी नहीं है, मास स्केल अवेयरनेस सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है वो कुछ और है, उसको अभी हम उसको देखते हैं कि वो क्या है। इसी तरह लॉ बनाने से भी ये मसला हल नहीं होगा। यानी लॉ बना ठीक है, अब वो वहां जिन जिन ममालिक में मसाइल इतने बढ़ गए, यानी बाज स्टडीज इस नौयत की हुई हैं जिसमें ये अंदाजा लगाने की कोशिश की गई है कि वो बच्चा दुनिया में बहुत सुसाइड का रेट बहुत बढ़ गया है, और आपके इल्म में है कि डेवलप्ड कंट्रीज में सुसाइटल इंटेंशंस का रेट बहुत ज्यादा हो गया है और सुसाइड बहुत होने लगी है। तो बाज स्टडीज ऐसी भी हुई हैं जिसमें यह अंदाजा लगाने की कोशिश की गई है कि जो सुसाइडल थॉट्स हैं या इंटेंशंस हैं या सुसाइड के जो का जो केस है, क्या उसकी कोई ताल्लुक उस बच्चे के साथ जो बुलिंग हुई है, क्या उसके साथ भी उसका कोई ताल्लुक है? तो बहरहाल इसके बारे में यकीन से तो नहीं कहा जाता, क्योंकि सिर्फ कोई एक सिंगल फैक्टर तो नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर कह लीजिए कि गुमान किया जा रहा है। तो ये जब बाज जगहों पर ये मसला इतना ज्यादा होने लगा, और तो वहां पर बहरहाल कानून बनाने की भी जरूरत पेश आई, यानी कि इसके ऊपर एंटी बुलिंग लॉज बन गए और इसके ऊपर पूरी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। लेकिन ये मसला ठीक कैसे होगा, इसको जरा समझने की जरूरत है कि जो अब तक मेजर्स लिए गए, क्या उससे ये ठीक हो जाएगा, और इसके लिए हमें करना क्या होगा। तो ये जो मैंने 3 गोल्स बताए, पहले तो हमें ये समझना है कि ये गोल्स मतलब हम इन गोल्स को पहले तो जहनी तौर पर क्लियर हो, और फिर हम इन्हें ओन करें, और फिर हम इन पे वन बाय वन काम करें। जो बच्चा बुली हुआ है उसको बुलिंग के मनफी असरात से बचाना, और जो बच्चा बुली हो रहा है उसको मुस्तकबिल में इस काबिल बनाना कि वो आसानी से बुली ना किया जा सके, और अगर उसको कोई ऐसी ज्यादती की कोशिश उसके साथ कर रहा है या उसको उसको टीज करता है, तो इसके लिए उससे यानी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना इसको आता हो। और तीसरी बात यह कि वो बच्चा जो बुली कर रहा है उस बच्चे को भी ताहयात एक मनफी लेबल में लॉक कर देने की बजाय, और उसकी ताहयात उसकी रेपुटेशन को खराब, या उसको एक बुरे बच्चे के तौर पर पूरी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये तो सोल्यूशन नहीं है। और या फिर हमने कानून और विजिलेंस के थ्रू उस बच्चे को बुलिंग से रोकने में कामयाब हो गए कि हमने कैमरे लगा दिए हैं, या हमने विजिलेंस बढ़ा दी है, या हमने रिपोर्टिंग का एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया है। तो अब कुछ भी होता है तो हम कैमरे में देख रहे होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द कैमरा विजिलेंस वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड द वेरी मतलब जैसे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस फॉर बुलिंग का एक रूल या पॉलिसी बना दी, तो इसके नतीजे में ये मसला फिर भी हल नहीं हुआ है। उस बच्चे की जिसको हम चाहते हैं कि जो बुलिंग कर रहा है वो ना करे, ये उस वक्त होगा जब हम उस बच्चे के शऊर पे काम करेंगे, और ये उस वक्त होगा जब हम उस बच्चे को अपने नफ्स पर काबू पाने में उसकी मदद करेंगे। अभी मसला यह है कि वो शऊर या तो वो उसका शऊर सही अंदाज से डेवलप नहीं हुआ, या वो अपने शऊर का या तो शऊर की कमी है, या फिर शऊर से वो अपने शऊर को बरोएकार नहीं ला रहा, या तो शऊर ही डेवलप नहीं हुआ है, या शऊर अगर है तो वो शऊर कहीं क्वारंटाइन है, शऊर कहीं सस्पेंडेड है और वो अपने शऊर से इस्तफादा नहीं कर रहा, या फिर उसका नफ्स अपने काबू में नहीं है। ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी मुमकिन है। तो इसका जो सलूशन है वो ज्यादा मतलब हमें चीजों को ज्यादा गहराई में उतर के देखना और समझना होगा, और फिर उनका हल उसमें से निकलेगा। एक चीज और इसमें मैं यहाँ पर एक बात और कहूं कि देखिए, एक उसूल हमें समझना होगा हर उस प्रॉब्लम का जिसके अंदर बहुत से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, और जो सोशल लाइफ को या हमारी कम्युनल या सोशल एक्सपीरियंस को मुतासर करता है। हर ऐसे मसले के अंदर हमें एक उसूल समझना होगा, और वो उसूल ये है यानी जिसमें कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, और वो उसूल ये है कि देखें बाज़ुकात क्या होता है कि किसी एक मसले में 4-5 स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगर मैं बुलिंग का कोई वाकया जो स्कूल में किया जा में फर्ज कीजिए क्लासरूम में हो रहा है, तो उसमें एक सबसे अहम स्टेक होल्डर उसके अंदर वो विक्टम ही है ना, जिसके साथ ज्यादती हो रही है। एक वो जो ज्यादती कर रहा है, एक वो जो ज्यादती देख रहा है, एक वो जिसकी क्लास में ये वाकया पेश आ रहा है यानी कि टीचर, एक वो जो इस बच्चे का पेरेंट है विक्टम का, और एक वो जो के अब्यूजर का पेरेंट है। मतलब अब कितने सारे लोग हो गए, विक्टम है, अब्यूजर है, इन दोनों को विटनेस करने वाला एक बच्चा है, किसी की क्लास में ये वाकया पेश आया है तो टीचर है, फिर विक्टम का पेरेंट है और अब्यूजर का पेरेंट है, और फिर उस स्कूल की मैनेजमेंट है। तो ये 6-7 लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। उसूल ये अपना हम सबको एक उसूल, और ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसूल हमें ये बनाना है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, इन सातों में से मैं कौन, मैं जो भी हूँ मुझे इस सिचुएशन के अंदर सबसे बड़ा प्रपोजल अपने लिए तैयार करना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने लिए महसूस कर। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी 6 या 7 स्टेक होल्डर्स को उनका रोल रियलाइज ना करवाया जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल करवाएं आप, मतलब आपने ये देखना, यानी अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, मैनेजमेंट है, आपको ये देखना है कि ये इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरा मसला है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, आपको आपका ये टॉप कंसर्न होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में या आपके इंस्टीट्यूशन में ये मसला क्यों हो रहा है, आपको इसकी बेइंतहा परेशानी और फिक्र होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप एब्यूजर की वालदा या वालिद हैं, यानी वो बच्चा जिसने किसी के साथ ज्यादती की है, तो आपको ये फिक्र होनी चाहिए कि भाई मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर आप उस बच्चे की वालदा या वालिद हैं जिसके साथ ये मसला पेश आया है, तो भी आपको देखें किसी मसले का वो तज्जिया जिसमें अपने हिस्से के करने के काम और सबसे सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल आप अपने लिए क्रिएट कर सकें, सबसे सबसे तफसीली रिकमेंडेशंस आप अपने अपने एक्शन प्लान में, अपने करने के लिए, अपने डोमेन में रहते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से इसके ऊपर आपको काम करना होगा। कभी कभी प्रॉब्लम्स की एनालिसिस में, खास तौर पे ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमारी सोशल लाइफ के अंदर पैदा होते हैं, उसमें एक बड़ा मसला ये पैदा होता है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स किसी एक स्टेक होल्डर को सोल रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कोई प्लान नहीं सोचते और अपने लिए सबसे बड़ा प्रपोजल नहीं बनाते। मतलब अगर किसी मसले के अंदर 6-7 किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमारे हमारे तज्जिए को सेहतमंद तज्जिया वो होगा जिसमें हम सबके करने की कोई चीज सोचें और अपने करने की सबसे ज्यादा सोचें। ये वो चीज है जो हमारे बच्चों में भी हमसे ही ट्रांसमिट होगी इंशाल्लाह।